أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين، ونصلي ونسلم على أئمة المسلمين وهداة المؤمنين وحماة المستضعفين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صلوات على محمد وآل محمد. حسین وارث انبیاء، وارث ابراہیم خلیل خدا، حسین خون خدا کے عنوان پر ہماری گفتگو آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اور بات ہماری جس مقام سے شروع ہوئی تھی وہ مقام یہ تھا کہ جب آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، یعنی وہ ساری کی ساری رسالت جو ابراہیم کے پاس ہے اس کی وراثت منتقل ہو رہی ہے حسین ابن علی کی طرف، اور اسی بات کو آپ کے سامنے آگے بڑھایا تھا، اور اس مقدمے کے ساتھ کہ چونکہ امتحان حسین سب سے بڑا ہے، اس لیے ہر اس مرحلے پر کہ جہاں پروردگار متعال ابراہیم کو یاد کرتا ہے، ابراہیم کا تذکرہ کرتا ہے، ابراہیم کی زندگی کے ایک ایک مرحلے کو قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، تو ایک ایک مرحلے پر ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں اور سید الشہداء کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں اس مقام پر زیادہ تیاری، زیادہ آمادگی نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم سے بڑا امتحان حسین ابن علی سے لیا جانا ہے، اور جس کا امتحان بڑا ہوگا پروردگار متعال اس کے آنے کی تیاری بھی اتنی ہی زیادہ کرے گا. اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم کی والدہ بہترین ممکن راستے کا انتخاب کریں تو غار میں چلی جائیں، شہر سے دور چلی جائے، شرک کی آلودگی اور شرک کی کثافت اور شرک کی گندگی سے دور لے جائے ابراہیم کو. لیکن جب حسین ابن علی کی باری آئے تو انہیں طہارتوں کے گھرانے کا انتخاب کیا جائے، جب شجرہ نسب کی بات آئے تو گرچہ پروردگار موحد گھرانے میں پیدا کرے لیکن ایک عام سے موحد گھرانے میں پیدا کرے، ایک عام سے شخص کے سرب سے اور ایک عام سے خاتون کے رحم سے ابراہیم کی ولادت ہو، لیکن حسین ابن علی کی جب باری آئے تو اب حسین ابن علی چونکہ آپ کا امتحان بڑا ہے، آپ سے کام بڑا لیا جانا ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، اس لیے اب آپ کے لیے کسی عام موحد گھرانے کا انتخاب نہیں کیا جائے گا بلکہ آپ کے لیے علی و فاطمہ کا انتخاب کیا جائے گا، آپ کے لیے محمد و خدیجہ کا انتخاب کیا جائے گا، آپ کے لیے نسل ابو طالب کا انتخاب کیا جائے گا. اور اب ہماری گفتگو ان دو مراحل سے گزر کر آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، وہ تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ ابراہیم کی والدہ سختیاں اٹھائے. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسے فرد نے پرورش پانا ہے، ایک ایسے نبی نے پرورش پانا ہے، ایک ایسے پیغمبر خدا نے پرورش پانا ہے کہ جس سے پروردگار متعال نے کام لینا ہے. لیکن جب یہی بات حسین ابن علی کے یہاں آئے، حسین ابن علی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھا جائے، تو اب وہ مصیبتیں کہاں، وہ پریشانیاں کہاں، وہ سختیاں کہاں کہ جو ابراہیم کی والدہ اٹھائے، اور وہ سختیاں کہاں کہ جو حسین ابن علی کی والدہ اٹھائے. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسے بچے کی پرورش کرنا ہے، اس گھرانے کے اندر ایک ایسے بچے نے پرورش پانا ہے کہ جس بچے نے دین کے ایک بہت بڑے کام کو انجام دینا. اب سختیاں کیا ہیں؟ ابراہیم کے ماجرے میں جا کر کے دیکھیے، ابراہیم کے واقعے میں قصے میں جا کر کے دیکھیے، تو سختیاں کیا ہیں، مصیبتیں کیا ہیں کہ 12 برس تک ابراہیم کی والدہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی. ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ماں کچھ دیر کے لیے بھی اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتی. پروردگار نے باپ اور ماں کی محبت میں فرق رکھا ہے، اور یہ فرق اس پروردگار متعالی اس لیے رکھا ہے کیونکہ باپ سے تقاضا کچھ اور ہے، ماں سے تقاضا کچھ اور ہے. اب یہ مفصل ایک عنوان ہے، ایک موضوع ہے کہ ماں کو جو محبت دی ہے کہ ماں کلیجے سے لگائے رکھتی ہے، سینے سے لگائے رکھتی ہے، اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی، لیکن باپ کی کیفیت یہ نہیں ہے. باپ چلا جاتا ہے، سفر پر بھی چلا جاتا ہے. کیا باپ کو بچے سے محبت نہیں ہے؟ نہیں، باپ کو بھی بچے سے محبت ہے، ماں کو بھی بچے سے محبت ہے، لیکن پروردگار متعال نے ان دو محبتوں کے اظہار میں فرق رکھا ہے فطرتاً. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تقاضا چونکہ مختلف ہے، اس لیے محبت کا اظہار مختلف ہے. ماں سے تقاضا یہ ہے کہ تم ہر وقت بچے کے ساتھ رہو، بچے کی تربیت کرو، لیکن باپ سے تقاضا یہ ہے کہ تم باہر جاؤ اور بچے کی ضروریات کا اہتمام اور انتظام کرو. اب اگر باپ ماں ہی کی طرح سے محبت کرنے لگے تو بچے کے رزق کا اہتمام کون کرے گا، اور اگر ماں باپ کی طرح سے محبت کرنے لگے تو بچے کی پرورش اور تربیت کون کرے گا. یعنی بچے کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تربیت اور پرورش کی ضرورت ہے، اور ایک کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو جائے اس کے لیے رزق کما کر کے لے کر کے آئے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرے، اس کے لیے گھر کا بندوبست کرے، اس کے لیے چھت کا بندوبست کرے، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے. اس لیے پروردگار نے محبت تو ایک رکھی ہے، لیکن اس محبت کا اظہار دو مختلف طریقوں سے رکھا ہے. اور یہ خود ایک موضوع ہے کہ پروردگار متعال نے ایک بچے کی تمام تر ضرورتوں کو ماں باپ کے ذریعے سے پورا کیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکیلی ماں ہو تب بھی بچے کی پرورش میں کمی رہ جاتی ہے، اکیلا باپ ہو تب بھی بچے کی پرورش سخت ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار متعال نے ان دونوں سے مل کر کے بچے کی تمام تر ضروریات کو پورا کیا ہے. اب ماں جاؤ 12-13 برس غار میں بچہ کسی کو بتا نہیں سکتی کہ میرے یہاں ایک اولاد ہے، غار میں چھپا کر کے رکھا ہوا ہے. جب جاتی ہیں غذا کا اہتمام کرتی ہیں، غذا اپنے ساتھ لے کر کے جاتی ہیں، وہاں پر اپنے بچے کے لیے غذا فراہم کرتی ہیں، اور اس کے بعد اپنے بچے کو اکیلا اس اندھیرے غار میں چھوڑ کر واپس آ جاتی ہے. یہ ہے ابراہیم کی والدہ ماجدہ. غار، اندھیرا، تنہائی، کوئی مانوس انسان پاس نہیں ہے کہ جس کے ساتھ انسان گفتگو کر سکے، وہاں پر ابراہیم پڑے ہو رہے ہیں. کتنا سخت ہوگا اس ماں کے لیے کہ جس کی محبت کا اظہار ہی یہی ہے کہ بچے کو کلیجے سے لگا کر کے رکھے. باپ نہیں ہے، ماں ہے. باپ کا محبت کے اظہار کا انداز یہ نہیں ہے کہ کلیجے سے لگا کر کے رکھے، لیکن باپ کی محبت کا اظہار کیا ہے؟ ماں کی محبت کا اظہار یہ ہے کہ کلیجے سے لگا کر کے رکھے، ہر وقت اپنے بچے کو اپنے پاس رکھے. لیکن یہ ابراہیم کی ماں، سختیاں اٹھاؤ. کیوں؟ اس لیے سختیاں اٹھاؤ کیونکہ تم نے اس دنیا کو ابراہیم دینا ہے. इसलिए सख्तियां उठाओ क्योंकि तुमने इस दुनिया को इब्राहिम देना है। सख्तियों से गुजर करके इब्राहिम की परवरिश होगी। इन इम्तिहानात से उबूर करना पड़ेगा, इन आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। क्यों? वजह यह है कि इब्राहिम को इस दुनिया में तुमने देना है, इब्राहिम की परवरिश करनी है। अजीजा इब्राहिम खत आप देखिए कि परवरदिगार मुताल ने किस तरह से इंसान को, चूंकि खल किया है ना, खालिक है, जब जो खालिक होता है उसे अपनी मखलूक के तमाम तर जिहाद का अंदाजा होता है। मिसाल के तौर पर आप जाइए दुकान पर कोई चीज खरीदने के लिए, जब आप खरीदने के लिए जाएंगे तो मुमकिन है आपसे उसकी कोई जहद पोशीदा रह जाए, लेकिन जो बनाने वाला है उससे कोई चीज पोशीदा नहीं होती, उसे उसकी सारी जिहाद का इल्म होता है। परवरदिगार मुताल ने भी चूंकि खालिक है इसलिए इंसान की तमाम तर जिहाद का उसे अंदाजा है, इसीलिए इन जिहाद में जो जरूरियात ईजाद होती हैं उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए परवरदिगार ने माँ और बाप दोनों को करार दिया। जब बच्चा रात में रोता है बाप का दिल नहीं दहलता, माँ का दिल दहलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप को मोहब्बत कम है, माँ को मोहब्बत ज्यादा है, नहीं, मोहब्बत परवरदिगार मुताल ने औलाद की नस्बत माँ बाप दोनों में रखी है। माँ के यहाँ मोहब्बत का इजहार ज्यादा है, बाप के यहाँ मोहब्बत का इजहार कम है, और ये भी परवरदिगार मुताल ही की तरफ से है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर बच्चा रोएगा बाप का दिल दहलेगा, बाप उठकर के बच्चे को संभालेगा, इसकी रात की नींद खराब हो गई, ये सुबह नहीं जा सकता रिस्क कमाने के लिए, इसलिए बाप के दिल में मोहब्बत का इजहार किसी और तरीके से रखा है। बाप के दिल में इजहार का तरीकाकार क्या है कि अब ये सुबह अपने नींद को कुर्बान करेगा, अपने बच्चों की मोहब्बत में जाएगा रिस्क कमाने के लिए। बाप के यहाँ मोहब्बत का इजहार इस तरह से है, लेकिन माँ के यहाँ इजहार किस तरह से है कि जब रात को बच्चा रोए तो तुम उठो, अपने सीने से लगाओ, तुम यहाँ पर इसे चुप कराओ, क्योंकि तुमने सुबह कर ली जाना, तुम्हारे लिए परवरदिगार मुताल ने आराम के लिए गुंजाइश काफी रखी है। अगर इस तरह से अजीजा ने ग्रामी कदर हम अपनी जिंदगियों को चलाएं, हमारे जो नौजवान जो शादी के बंधन में बंधते हैं वो इस तरह से अपनी जिंदगियों को देखें कि परवरदिगार ने हमारे जेंडर के एतबार से, हमारे जिन्स के एतबार से हमें सलाहियतें भी रखी हैं और उन सलाहियतों की बुनियाद पर हमें जिम्मेदारियां भी दी हैं। अगर इस तरह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं तो खुदा जाने कितने हमारे मुश्किलात और प्रॉब्लम्स हल हो जाए। क्यों? क्योंकि हर जेंडर को मालूम होगा कि उसके अंदर परवरदिगार ने किस सलाहियत को रखा है और उसी सलाहियत की बुनियाद पर किस जिम्मेदारी को उसे तलब किया है। बहुत अहम और मानक गुफ्तगू। आज जो सबसे ज्यादा जिस मौजू को शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों के लिए बयान किया जाना चाहिए वो क्या है? वो उनवान ये उनवान है कि तुम खातून हो, तुम्हारे अंदर परवरदिगार ने किन सलाहियतों को रखा है, और तुम मर्द हो, तुम्हारे अंदर किन सलाहियतों को रखा है, और किन सलाहियतों की बुनियाद पर तुम्हें क्या जिम्मेदारियां दी हैं। और जब तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को बजा लाओगे तो घराना एक ऐसा घराना बनेगा कि जिसके अंदर ऐसे बच्चे परवरिश पाएंगे कि जिनके अंदर इंसानियत भी पाई जाती होगी, इस्लाम भी पाया जाता होगा, ईमान भी पाया जाता होगा। क्योंकि ये एक पजल की मानिंद है। बच्चों जो घर में पजल खेलते हैं, ये सारे पजल के टुकड़े, ये सारे घर की इकाइयां जब दुरुस्त अंदाज में दूसरे के साथ जोड़ी जाएंगी तो एक खूबसूरत घराना सामने आएगा। अगर किसी पजल के अंदर कोई खाली जगह है तो वो दूसरे पजल के टुकड़े ने आकर के उस खाली जगह को पूर्ण करना है। अगर किसी पजल के टुकड़े में कोई जगह बाहर निकली हुई है, इसका मतलब कोई ऐसी खाली जगह है जिसे इस पजल के टुकड़े ने पूर्ण करना है। परवरदिगार मुताल ने भी खातून और मर्द के दरमियान ऐसी सलाहियतों को रखा है कि इसमें कुछ ऐसा ज्यादा रखा है जिसकी इसको जरूरत है, इसमें कुछ ऐसा ज्यादा रखा है जिसकी इसको जरूरत है, और फिर इन दोनों को मिला करके परवरदिगार ने खानवादे की खूबसूरत तस्वीर को बनाया है, खानदान की खूबसूरत तस्वीर को बनाया है। बस इब्राहिम, वालिद का इंतकाल हो चुका है, अकेली माँ, यतीम किस तरह से बच्चे को बड़ा करे, सख्तियों से बच्चे को बड़ा कर रही है। 12 बरस तक, 1, 2, 4 दिन की बात नहीं है, 1 हफ्ते 10 दिन की बात नहीं है, 12-13 साल, और कौन सा जमाना, 12 13 साल आप सब जानते हैं कि कोई बुलूगत के करीब का जमाना, 12 13 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है उसे मां-बाप की इतनी जरूरत नहीं होती। 12 13 साल से जो बड़ा बच्चा होता है उसे मां-बाप की जरूरत नहीं होती। जो 12 13 साल से छोटा बच्चा होता है बुलूगत से पहले का जो उसकी उम्र होती है वहां पर उसे मां-बाप के सहारे की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे मौके पर परवरदिगार मुताल कह रहा है मैं सख्तियों के साथ बड़ा करूं। अब यहां पर एक मरहले से उबूर करूंगा और आज इंशाल्लाह अपने गुफ्तगू को इस तीसरे मरहले पर छोड़ करके आपके सामने रुख्सत तलब करूंगा। देखिए अजीज जाने गिरानी पर सख्तियां क्यों बर्दाश्त करता है इंसान, अब इसे समझिए ताकि फिर अजमत फातिमा और अजमत हुसैन इब्न अली समझ में आए। इब्राहिम की वालदा का हवाल आपने सुन लिया, इब्राहिम की परवरिश किस तरह हुई। अब दूसरा सवाल यह है आज की गुफ्तगू में कि इंसान सख्तियों को क्यों बर्दाश्त करता है। इंसान सख्तियों को इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि उसके हल की ताकत उसके पास नहीं होती। मिसाल आपके सामने पेश करता हूं, आपको भूख लगी है और आप खाना नहीं खाते, इस खाना ना खाने की वजह क्या है? इस खाना ना खाने की वजह यह है कि या खाना घर में नहीं है, या खाना बन रहा है, या खाना आमादा नहीं है, या खाना अभी आपके लिए खाना मुजर है। कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से आप अपनी इस जरूरत को पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से सख्ती में मुब्तला होते हैं। यानी क्या? यानी सख्ती किसके लिए है? जिसकी कुदरत जितनी कम उसके लिए सख्तियां इतनी ज्यादा। सब जाकर देख लीजिए, जो बेचारा मजदूर है 12 15 18 20 हजार रुपए कमाता है, अब चूंकि इसकी कुदरत कम है इसकी सख्तियां ज्यादा है। लेकिन अगर कोई मिसाल के तौर पर अच्छा कमाता है, अच्छी जगह जॉब करता है, अच्छा कारोबार करता है, तो चूंकि इसकी माली हैसियत ज्यादा है, कुदरत ज्यादा है, तो सख्तियां कम है। अब आप इसको तस्वर कर सकते हैं, माशरे की बहुत सी मिसालों को आप अपने जहन में ला सकते हैं कि जहां कुदरत बढ़ती चली जाती है सख्तियां कम होती चली जाती है, और जहां पर कुदरत कम होती चली जाती है वहां पर सख्तियां बढ़ती चली जाती है। और हमारे मुल्क का हाल तो आप सबके सामने है कि जिसकी कुदरत जितनी ज्यादा उतनी ही उसके लिए सख्तियां कम। अगर वो गुनाह भी करे, अगर कुदरतमंद है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर किसी की कुदरत कम है तो उसकी सख्तियां बढ़ती चली जाती हैं। फिर वो अगर छोटा सा भी कोई काम कर दे तो उसके पीछे सब पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कादिर नहीं है, बेचारा है, लावारिस है, तो इसके पीछे सब पड़ जाते हैं। अजीजाने गिरामी कदर, ये इस्लामी मुआशरे के कवानीन नहीं है। इस्लामी मुआशरे के अंदर कुदरत के एतबार से फैसले नहीं होते, बल्कि देखा जाता है कि उसने किया क्या है। खैर ये मौजूद गुफ्तगू नहीं है। बस सख्तियां इंसान कब तहम्मुल करता है? सख्तियां इंसान उस वक्त तहम्मुल करता है कि जब उन सख्तियों से निकलने की कुदरत नहीं होती। इब्राहिम की माँ सख्तियां क्यों बर्दाश्त कर रही है? इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि क्या करें, मजबूर हैं। बच्चे को शहर में ला नहीं सकती। नमरूद ने हुक्म दिया है कि अगर बच्चा पैदा हुआ सर ज़िबा कर दिया जाएगा, सर जुदा कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। इब्राहिम की माँ इसलिए सख्तियों को बर्दाश्त कर रही है क्योंकि मजबूर है, कुछ कर नहीं सकती, कुदरत नहीं रखती कि अपने बच्चे को शहर में वापस ले आए और कहे कि ये मेरा बच्चा है और नमरूद से बचा सके। नहीं, बड़ा कर रही है बच्चे को ताकि एक ऐसी उम्र तक पहुंच जाए कि जिसके बाद अपना दिफा खुद कर सके, अपनी बात खुद कर सके, फरार कर सके, अगर कोई हमला करे जवाब दे सके, मुकाबला कर सके, ऐसी उम्र का इंतजार कर रही है। खैर, क्यों बर्दाश्त कर रही है सख्तियां? सख्तियां बर्दाश्त कर रही है लेकिन इसलिए कि कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बच्चे को गार में रखना पड़ेगा, माँ है, सख्त है, दिल दहल जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है, लेकिन क्या करे, कोई और चारा नहीं है। लेकिन अजीजा ने गिरा में कदर, अब इसी सारे मुकदमे के साथ आइए जाते गिरामिये हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब को देखिए कि ये वो मुकाम है कि जहां पर मजबूरी नहीं है, जहां पर इख्तियार महदूद नहीं है, बल्कि माँ से वल्ला हर शय का इख्तियार है फातिमा जहरा के पास। यहां पर बेचारगी और लावारिसी की कैफियत नहीं है, कुदरत की कमी की कैफियत नहीं है। आपने बाढ़ा को वाकया सुना है और मैं इस वाकये को अलग जहद से अलग अंदाज से देखता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ, शायद आप भी पसंद फरमाएं। बहुत मशहूर मालूम कहा गया कि अम्मा ईद आ रही है, सबों के पास कपड़े हैं, हमारे पास कपड़े नहीं हैं। फातिमा ज़हरा ने कहा बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी को दिए हुए हैं, मैं मौसू से मजबूत हूँ, कुदरत की कमी नहीं है, क्यों वजह यह बेटा तुम्हारे कपड़े किसको दिए हुए हैं, दर्जी को दिए हुए, खयाल के पास है, दर्जी के पास है, सीकर के लाएगा। फातिमा ज़हरा ने यह कहा था कि आसमान से आएंगे, नहीं। फातिमा ज़हरा ने यह कहा था कि रिजवान जन्नत लेकर के आएंगे, नहीं। फातिमा ज़हरा ने यह कहा था कि जन्नत के कपड़े से बनाया गया होगा लिबास, नहीं। कहा बेटा आम सा लिबास है, खयाल को दिया है, ईद तक आ जाएगा। अब इस मुकाम पर परवरदिगार मुतआल तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूँ फातिमा की बात पूरी हो जाए। फातिमा की बात पूरी हो जाए यानी क्या? यानी कपड़े पहुंच जाए, ये है ना फातिमा की बात। फातिमा की बात ये नहीं है कि आसमान से आएंगे कपड़े, फातिमा की बात ये नहीं है कि रिजवान लेकर के आएगा, फातिमा की बात ये है कि कपड़े आएंगे, ये है फातिमा की बात। फातिमा की बात पूरी करनी है परवरदिगार। मदीने में क्या खयात नहीं थे, क्या दर्जी नहीं थे? बहुत से दर्जी थे, बहुत से खयात थे, सब कपड़े पहनते थे, कोई ना कोई तो सीता होगा, दर्जी थे, खयात थे। जब मदीना में बहुत से खयात हैं, बहुत से दर्जी हैं, परवरदिगार किसी दर्जी के ख्वाब में आ जाता कि जाओ हसनैन के लिए कपड़े बना करके लेकर के जाओ, और वो दर्जी उठता कपड़े बनाता लेकर के जाता कपड़े, और न सिर्फ लेके जाता, कयामत तक फख्र करता, उसकी नस्लें फख्र करती कि हमारे बाबा ने हसनैन के कपड़े सिए थे। हसनैन का मकाम और मंजिलत तो सबको मालूम है ना। अगर ख्वाब आ जाता किसी दर्जी को, किसी दर्जी पर इल्हाम हो जाता कि हसनैन को कपड़ों की जरूरत है, फातिमा ने तो नहीं कहा था कि जन्नत से आएंगे रिजवान लेकर के आएगा, कहा था कपड़े आएंगे। अब जब फातिमा ने कहा था कि कपड़े लेकर के आएंगे, किसी दर्जी को ख्वाब आ जाता, वो उठता कपड़े बनाता लेकर के आता, दस्तक देता, कपड़े लेकर के आया हूँ, फातिमा की बात पूरी हो जाती। ये जन्नत का कपड़ा इकट्ठा करवाने की और जन्नत में खयात रिजवान को बेचने की जरूरत क्या थी? तो आपने वाकया बहुत सी दफा सुना है, लेकिन शायद इस जहन की तरफ गौर न किया हो। परवरदिगार मुतआल यही जवाब देता हुआ नजर आएगा, सिर्फ कपड़े पहुंचाना मकसूद नहीं है, फातिमा के हुक्म की रसाई को बताना मकसूद है कि फातिमा के जबान से निकले हुए जुमले की रसाई कहां तक है। अगर मदीने से कपड़े आ जाते तो पता ना चलता कि फातिमा की हुक्म फरमाई और हुकूमत कहां तक है। रिजवाने जन्नत जो जन्नत के आला तरीन मरातिब पर है, उसे भेज करके बताना चाहता हूँ कि फातिमा अगर अपनी जबान को हरकत दे तो जन्नत के आला तरीन मरातिब तक फातिमा की हुकूमत और हुक्म फरमाई है। अब इब्राहिम की माँ मजबूर है, कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बच्चे को गार में छोड़ करके आए, लेकिन यहाँ पर तो बेचारगी की कैफियत नहीं है, यहाँ पर तो मजबूरी की कैफियत नहीं है, ये वो मकाम है कि जहाँ पर कुन फयकुन का इख्तियार है, माँ से वल्ला हर शय के इख्तियार में है, इशारा कर दे तो फरिश्तों की फौज आ जाए मदद के लिए। लेकिन इसके बावजूद फातिमा अपने हाथ से चक्की पीस करके हुसैन को पालो, क्यों? क्योंकि हुसैन से हमने काम इतना बड़ा लेना है कि इब्राहिम की माँ से ज्यादा सख्तियां तुम्हें उठानी पड़ेगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसलिए क्यों? क्योंकि परवरदिगार की वो जिम्मेदारी हुसैन इब्ने अली के सुपुर्द करनी है कि अब हर मामले में इब्राहिम से आगे हुसैन इब्ने अली। सारे ग्राम में खत इस मकाम और मंजिलत को तसव्वुर करने की और सोचने और समझने की जरूरत है। रसूल अल्लाह बैत फातिमा में दाखिल हुए, क्या देखा? बेटी चक्की पीस रही है, एक हाथ से चक्की पीस रही है, एक हाथ से हसनैन का झूला झूला रही, जो चादर पहनी हुई है उस पर इतनी गर्द लगी हुई है कि पता चल रहा है कि फातिमा ने अभी अभी घर में झाड़ू दिया है। रसूलल्लाह ने अपनी इस बेटी का यह हाल देखा, यह आलम देखा, आंखों में आंसू आ गए। एक दफा बेटी मुतवज्जे हुई बाबा की तरफ कि बाबा आया है और मुझे देख रहा है, आप तसव्वुर कीजिए किसी आम घराने की बात हो और बाप बहुत मालदार हो और बच्ची की यह हालत हो और बच्ची को ऐसा बाप देखे वो बाप की जिसके पास बहुत इख्तियार हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत उसके पास माल और दौलत, रेल फेल हो, गुलाम हो, इख्तियार हो। अब बेटी का किरदार क्या होता है? यहाँ पर बेटी बढ़कर के शिकायतें करती है, बाबा अभी तो मेरी अच्छी हालत है, रात को तो मेरी हालत और बुरी हो जाती है, मैं इतना थक जाती हूँ, यूं हो जाता है, यूं हो जाता है। और जब बाप कर भी सकता हो, बाप कर भी सकता हो, बाप इतना इख्तियार रखता हो कि इशारा करे तो दरख्त उखड़ करके आ जाए, इशारा करे तो चांद दो टुकड़ों में तब्दील हो जाए, ऐसा बाप। और बेटी को जब पता चले कि बाप मुझे देखकर गमगीन हो रहा है, तो भी कितना अच्छा मौका है बाप से कुछ हासिल करने का। लेकिन ये है मकाम फातिमा ज़हरा सैयदा निसाए आलमीन के, जैसे ही बाबा को देखा तो फातिमा ये क्या हालत बना करके रखी है, तो अब शिकायत लबों पर नहीं आती, अब आता है परवरदिगार, ऐ बाबा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल। बाबा फातिमा के लबों पर शिकायत नहीं है, पर फातिमा हर हाल में परवरदिगार की हम्द सना कर रही है। यह है मकाम, एक इशारा करें तो एक झूला झुलाने के लिए फरिश्तों का फौज और लश्कर आ जाए, एक चक्की को पीसने के लिए फरिश्तों की फौज आ जाए, आसमान से गिजा आ जाए, लेकिन इम्तिहान बड़ा लिया जाना है। चूंकि इम्तिहान बड़ा है इसलिए सख्तियां ज्यादा उठानी पड़ेंगी। इब्राहिम की माँ को भी हमने सख्ती में मुब्तला किया था, लेकिन इब्राहिम की माँ की सख्तियाँ कम थी, ऐ फातिमा तुम्हारी सख्तियाँ ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि बार बार ही जुमला आपके सामने तकरार करता हूँ, हुसैन इब्ने अली ने वो काम करना है जिस काम ने मोहर सब्त करनी है रिसालत अंबिया पर। रिसालत यजीदियत, रिसालत की पैकेजिंग में यजीदियत, रिसालत का रंग चढ़ा करके फरोख की जा रही थी। इब्राहिम की रिसालत खतरे में थी, क्यों? क्योंकि रिसालत इब्राहिम की नहीं थी, ऊपर रंग रिसालत इब्राहिम का चढ़ाया हुआ था, अंदर सुफियानियत थी, अंदर यजीदियत थी, अंदर कुफ्र था, शिर्क था, ऊपर रिसालत का रंग चढ़ा करके बेचा जा रहा था। अब चूंकि तमाम तर रसूलों की रिसालत पर हर्फ आ रहा था, तो ऐ हुसैन ऐसे मौके पर आपने कयाम करना है, आपने तमाम तर रसूलों की रिसालत को बचाना है, कयामत तक किसी की जुर्रत नहीं होगी, ऐ हुसैन आप ऐसा काम करेंगे कि वो रिसालत के रंग में यजीदियत और सुफियानियत और शिर्क और कुफ्र को इस्लाम की पैकेजिंग में फरोग कर सके, ऐसा काम करना है हुसैन इब्ने अली। अब चूंकि आपका काम इतना बड़ा है कि तमाम तर रिसालतों पर मोहर लगानी है, तो अब आपके लिए सख्तियां भी इतनी ज्यादा हैं, आजमाइशें भी इतनी ज्यादा हैं, इम्तिहान भी इतने ज्यादा हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। जहद से, यानी एक जहद मैंने एक वाक्य में आपके सामने बयान कर दी, अब इस जहद को आप बोलते चले जाइए और इसको कयास करते चले जाइए, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेकर के जमाने के इमाम की शख्सियत तक तमाम तर आइम्मा की जिंदगी के अहवाल पर, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस आलम में जिंदगी गुजारी। ये जो हुसैन इब्ने अली है, ये वारिसा इस्माइल सबीहिल्लाह है। अज़ीज़ान-ए-गिरामी-क़द्र, इस्माइल अगर अपने एड़ियों को रगड़े तो चश्मा जारी हो जाए। वो हुसैन इब्ने अली के जो पैदा जब हो तो इसके झूले से फरिश्ते शिफा लेकर के जाए, क्या इस हुसैन इब्ने अली के पास इतनी ताकत और कुदरत नहीं है कि अगर एक ठोकर मारे तो वहां से चश्मा जारी हो जाए? लेकिन इसके बच्चे प्यासे रहेंगे, क्यों? क्योंकि इम्तिहान बड़ा है हुसैन इब्ने अली का। और क्या पाबंदी दिखाई है इस घराने ने इन इम्तिहान के सामने। मैंने आपके सामने पेश किया था कि हजरत हाजरा जब इस्माइल वापस आए तो देखा कि गले पर छुरी के निशानात हैं, छुरी सिर्फ रखी थी इब्राहिम ने, तो निशान आ गया था गले पर। तो जब हाजरा ने निशानात को देखा, मरीज हो गई, उसी मरस के आलम में इस दुनिया से रुखसत हो गई। हाजरा का इम्तिहान जहां खत्म हो वहां से ज़ैनब का इम्तिहान शुरू होता है। हाजरा बेटे की गर्दन पर छुरी के निशानात न देख सके, ज़ैनब अपने सामने अपने बच्चों को ज़िबा होते हुए देखे, क्यों? क्योंकि काम बड़ा लिया जाता है, परवरदिगार ने जिम्मेदारी बड़ी लगा दी है, इम्तिहान बड़ा है। सफा और मरवा के दरमियान आप जब सही करते हैं तो एक मकाम पर आकर के कहा जाता है कि यहाँ पर आप हरबला कीजिए। जो हज पर गए उन्हें मालूम है हरबला क्या है। आप बच्चे हैं, मैं मिसाल के तौर पर समझाने के लिए आप दो पहाड़ियों को फर्ज कीजिए, एक पहाड़ी सफा की, एक पहाड़ी मरवा की, और जब दो पहाड़ी के दरमियान एक वैली बन जाएगी। अब जो वैली होती है वो ढलान में होती है, पहाड़ ऊंचे होते हैं, जो वैली होती है वो ढलान में होती है। सामने काबे के साथ मकाम इस्माइल जो आज मौजूद है वहां है इस्माइल। हाजरा आई है पानी की तलाश में, दौड़ रही है सफा और मरवा के दरमियान, एक मुकाम को आता है कि जहां पर कहा जाता है कि यहां पर मुस्तहब यह है कि दौड़ करके चलो, हरबला करो। हरबला यानी क्या? यानी तकरीबन अगर मैं तर्जुमा करना चाहूँ तो जॉगिंग का तर्जुमा बनेगा कि जॉगिंग करो, थोड़ा सा तेज तेज कदम बढ़ाओ, इस मुकाम पर आहिस्ता ना चलो, तेज चलो। यानी वही जो बिल्कुल वैली का एरिया है, जो बिल्कुल ढलान का एरिया है, उसमें कहा जाता है हरबला करो। क्यों? ताकि जब इस ढलान में आ गई तो बच्चा नजर नहीं आता था, बच्चा नजर नहीं आता था, तो हाजरा कोशिश ये करती थी कि जल्दी से इस मुकाम से बढ़कर एक बुलंद मुकाम की तरफ चली जाए ताकि बच्चा दोबारा नजर आना शुरू हो जाए। फिर जब मरवा से चलती थी उस ढलान पर पहुंचती थी तो तेजी से उस ढलान से गुजरती थी ताकि बच्चा दोबारा नजर आना शुरू हो जाए, बच्चा आंखों से छुपा ना रहे, बच्चे को मुस्तकिल देखती रहे। यह है हाजरा का इम्तिहान कि हाजरा अपने बच्चे को अपनी आंखों से दूर बर्दाश्त ना कर सके चंद लम्हों के लिए। लेकिन आप किसी रिवायत किसी तारीख की किताब में नहीं दिखाएंगे कि जब हुसैन इब्ने अली अली असगर को लेकर के चले तो माँ आ गई हो कि मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। यह है मकाम इस खानदान का कि अपने बच्चों को इस तरह इमाम वक्त और हुज्जत खुदा की बारगाह में और रास्ते में कुर्बान कर दिया कि वो हाजरा कि जो एक लम्हे के लिए अपने बच्चे को अपनी आंखों से ओझल न देख सके, ये बारिश हाजरा, ये फख्र हाजरा अपने बच्चे को इमाम पर ऐसे कुर्बान कर दे कि खैमे के दरवाजे तक भी न आए अली असगर को देखने के लिए। अजीजान गिरामी की कदर ये है मकाम करबला वाले। खैर हमारी गुफ्तगू खलील खुदा और खून खुदा यानी इब्राहिम और हुसैन के उनवान पर आगे बढ़ रही है और तीन मरहले हमने आपके सामने आज पांचवी गुफ्तगू तक तय कर लिए हैं। कल से इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अजीजान गिरामी की कदर इन करबला वालों को समझना है तो आप तारीख की किताबों को मख्तल की किताबों को तौहीद की निगाह से पढ़ना शुरू करें। जैसी तौहीद आपको करबला में अमली होती हुई नजर आएगी ऐसी तौहीद तौहीद पर जिल्दे किताबों में लिख दीजिए वैसी तौहीद नजर नहीं आएगी। बच्चे अल्लाह की रहमत कुर्बान, नामूस खुदा की रहमत कुर्बान, भाई खुदा की रहमत कुर्बान। क्या मकाम है अजीजा ने गिरा कदर उन माओं का। मैंने आपके खिदमत में इब्तदाई कलाम में पेश किया कि माँ कलेजे से जुदा करना नहीं चाहती बच्चों को, लेकिन हुसैन इब्ने अली ये कहने पर मजबूर हो गए परवरदिगार ये कैसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को मरने के लिए तैयार कर रही हैं, ये ऐसी माएँ हैं कि ये इमामत के वजूद में फना हो चुकी हैं, ये इमामत के आगे चूँ और चिरा नहीं करती बल्कि अपना सब कुछ इमामत की राह में देने के लिए आमद हो, ये ऐसी माएँ। जब ये काफिला मक्का से चला थोड़ा ही दूर को पहुंचा था ज़ैनब को किसी ने खबर दी कि अब्दुल्ला मुलाकात के लिए आए हैं। कहने लगी हो ना हो अब्दुल्ला मुझे वापस लेने के लिए आए हैं, अब्दुल्ला बुला रहे हैं। यकीन हो गया बीवी को कि अब तो बात यही है कि मुझे वापस लेकर के जा रहे हैं। अब्दुल्ला के सामने आए कहा अब्दुल्ला इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तो क्या हो गया? का देखो अगर तुमने इसरार किया और मुझे अपने साथ ले गए तो याद रखना ज़ैनब हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकेगी, ज़ैनब मर जाएगी। अब्दुल्ला ने कहा बीबी आपसे किसने कहा कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मैं तो आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। कहा अब्दुल्ला क्या देने के लिए आए? कहा अपने दो बच्चे आपके हवाले करने के लिए आए। कहा अब्दुल्ला इनको मेरे हवाले क्यों कर रहे हो? कहा मैंने रसूल अल्लाह से सुना है कि जब सफर पर जाओ तो सदके का सामान साथ लेकर के जाया करो। ए बीबी, अगर कभी हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आए ना तो इन दोनों बच्चों को वार करके कुर्बान कर देना। फिर कारवां चला। शबे आशूर हुसैन गश्त पर निकले अपने खैमों में। ज़ैनब के खैमे के बाहर से जो गुजरे क्या देखा, दो बच्चों को बिठाए कह रहे देखो कल सुबह मालूम है ना जंग का दिन है, कहीं ऐसा ना हो अली अकबर का लाशा तुमसे पहले आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कासिम तुमसे पहले कुर्बान हो जाए, कल बता देना तुम किसके पोते हो किसके नवासे हो। कहा अम्मा कल इजाजत दिलवा देना बता देंगे किसके पोते हो किसके नवासे हैं। और उसके बाद कहने लगी बेटो देखना अगर जंग करते करते दरिया के किनारे पहुंच जाओ ना तो दरिया के किनारे जाकर के पानी न पीना, जानना हुसैन प्यासे हैं, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। अल्लाह हरे करबला की माए अपनी ममता को कुर्बान कर दिया हुसैन ने अली के लिए। एक माँ अगर उसका बच्चा प्यासा हो वो अपना सब कुछ देकर बच्चे की प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन ये कैसी माएं हैं जो कह रही हैं बेटा अगर दरिया के किनारे पहुंच भी जाओ ना तो पानी की तरफ नजर उठा कर के ना देखना, मौला हुसैन प्यासे हैं। और कहा कि बेटो जब जाओ और अपना तारुफ कराओ तो गलती से ये ना कह देना कि हुसैन हमारे मामू हैं, बल्कि कहना हम हुसैन के गुलाम हैं, हुसैन हमारे आका और मौला हैं। एक दफा हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, अजीजो सुबह आशूर में मुदार हुई, असहाब जा रहे हैं अंसार जा रहे हैं। एक दफा ज़ैनब ने कहा भैया इन दोनों बच्चों को जाने की इजाजत दे दो। कब बहन कैसी बातें कर रही हो, मैं कैसे तुम्हारे बच्चों को मरने की इजाजत दे सकता हूँ। अबुल फजल अब्बास को बुलाए, अब्बास तुम मेरी कोई बात नहीं टालते, मैं जो कहूँ बिनवान अमल करते हो, एक बात कहूँ मेरी बात पर अमल करोगे? कहा बीबी हुक्म फरमाइए। कहा इन दोनों बच्चों को लेकर के जाओ और हुसैन से इनको इजाजत दिलवा दो। अब्बास आए और मोहम्मद का हाथ थाम कर हुसैन ने आते हुए देखा। कहा अब्बास बच्चों को कुर्बानी के लिए लेकर के आ रहे हो, बहन के बच्चों को फिदा करने के लिए लेकर के आ रहे हो। एक वो मकाम आया तो दोनों बच्चों को न जाने किस तरह इजाजत मिली, हुसैन ने अपने हाथों से सवार कराया, एक दफा भेजा, दोनों बच्चों ने हमला किया और ऐसा हमला किया कि लश्कर को चीरते हुए उमर इब्ने साद के खैमे तक जा पहुंचे। आजीजों किसी ने आवाज दी जानते नहीं हो ये कौन है, ये जाफर तैयार के पोते हैं, अली इब्ने अबी तालिब के नवासे हैं, अरे ऐसे इनको काबू न कर सकोगे, घेर करके मारो। पहले सबने छोटे भाई को घेर लिया, अब जिसके पास जो था उसने इस छोटे 7-8-9 बरस के बच्चे पर बरसाना शुरू किया, अरे छोटा सा बच्चा था छोटा सा खत था कब तक बर्दाश्त करता। एक दफा जीन से जमीने करबला पर आया और बड़े भाई को मदद के लिए पुकारा और बड़ा भाई दौड़ा अपने भाई की मदद के लिए। अब सबने मिलकर बड़े भाई को अपने घेरे में लिया और बड़े भाई पर जो कुछ जिसके पास था उसने मारना शुरू किया। अब वो मकाम आया जब बड़े भाई से भी संभला न गया तो जमीने करबला पर आए अपने मामू को मदद के लिए पुकारा। हुसैन इब्न अली तारीख का जुमला है, ऐसे हुसैन इब्न अली झपटे जैसे कुकाब अपने शिकार की तरफ झपटता है, झपटे अपनी बहन की दो अमानतों को उठाया और उठाने का तरीका मुस्तनद जानते हैं क्या लिखा, का एक को अपने सीधे कंधे से लगाया एक को अपने बाएं कंधे से लगाया और अब लेकर के आ रहे हैं दोनों बच्चों को। जब भी किसी शहीद का जनाजा हुसैन लेकर के आते थे सबसे पहले ज़ैनब कुबरा इस्तकबाल के लिए आगे आती थी, लेकिन ये आज भी दो जनाजे हैं ज़ैनब इस्तकबाल के लिए नहीं आए। अजीजों का ज़ैनब को बुलाओ, बीवियों ने सोचा शायद बच्चों के जनाजे हैं, रश खा करके किसी शहर में पड़ी होगी, जब ढूंढते ढूंढते गए क्या देखा सर सजदे में रखा हुआ है। परवरदिगार ज़ैनब की इस कलीम से कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आओ बीवियों ने मोहम्मद आ गए, ये क्या जिंदा आ गए, नहीं बीवियों ने मोहम्मद के जनाजे आ गए। अब आए दो बच्चों के दरमियान जगह बनाए, दो सालों बैठे अपने सर को सजदे में रखा, सीधा हाथ उनके सीने पर रखा, बाया हाथ मोहम्मद के सीने में रखा, کر بچوں کو نہیں روئی۔ جب یہ کاروان مدینہ پہنچا، زینب نے اپنی ساری ذمہ داری ادا کر دی، حسین کی ساری ذمہ داریوں کو ان کے گھروں تک پہنچا دیا، حسین کے اس کرتے کو رسول اللہ کی قبر پہ رکھ دیا۔ اب جو ذمہ داریوں کا بند زینب کی ممتا کے آگے بندھا ہوا تھا وہ ٹوٹا۔ جیسے ہی اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا، اپنے دو بچے یاد آئے،
رحمتك يا ارحم الراحمين. ما فرح حسين.